आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
नमस्कार, यह 28 फरवरी का दिन भर, आज है मंगलवार। मेरा नाम नितिन ठाकुर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सीएम ने झट से मंजूर भी कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी के विरोध वाली याचिका खारिज होने के कुछ ही देर बाद ये फैसला लिया गया, तो इससे दिल्ली की राजनीति और राज्य की सत्ता में क्या बदलेगा समझेंगे। पड़ोसी देशों में सत्ता के लिए उठा पटक अपने चरम पर है। पाकिस्तान से होते हुए ये लड़ाई अब पहुंच गई है नेपाल। राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले पीएम प्रचंड की कुर्सी खतरे में है। 2 महीने में ही नेपाल की सियासत में क्या बदल गया ये जानेंगे। उधर आज बिहार में महागठबंधन 2.0 का पहला बजट पेश हो गया है। 2 लाख करोड़ के इस बजट में इंडस्ट्री लगाने, नौकरी देने की भरपूर बातें हुई हैं। और क्या क्या कहा गया देखते हैं वो भी। फिर प्याज की कीमतों पर बात करनी है, क्योंकि भारत के किसानों को ये कीमतें बहुत रुला रही हैं। जहां दुनिया भर में इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं, हमारे यहाँ किसानों को प्याज औने पौने भाव में बेचनी पड़ रही है। तो इसका अर्थशास्त्र समझेंगे और आखिर में भौचक सुनेंगे, लेकिन पहले शुभम तिवारी से 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनते हैं।
शुक्रिया नितिन। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया इस्तीफा मंजूर। भारत का GDP ग्रोथ रेट गिरा। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में GDP 4.4% रहा। महाराष्ट्र विधानसभा में प्याज पर हंगामा। 2 रुपए किलो में प्याज बेचने को मजबूर हैं किसान। बिहार सरकार के बजट में बढ़ोतरी। नए वित्तीय वर्ष के लिए 2,61,885 करोड़ का बजट हुआ पेश। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की सुप्रीम कोर्ट से मांग। याचिकाकर्ता ने दिया श्रद्धा हत्याकांड का हवाला। BJP का ओडिशा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर उठाए गंभीर सवाल। और चीन के विदेश मंत्री आएंगे दिल्ली। G20 मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल।
यह दिन भर मैं हूं नितिन ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी के विरोध वाली याचिका खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने सबको चौंकाते हुए डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके पास आबकारी शिक्षा समेत 18 विभाग थे। साथ ही साथ दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिना देरी के दोनों इस्तीफे मंजूर कर लिए। आपको याद दिला दूं, सत्येंद्र जैन तो पहले से जेल में थे। सिसोदिया को कल ही 5 दिन की CBI रिमांड पर भेजा गया था। आज सिसोदिया अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के साथ याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच के सामने पेश हुए, जिसे ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा कर रहे थे। दिल्ली की राजनीति में उथल पुथल मचा रहे लिकर पॉलिसी घोटाले मामले में ही सत्येंद्र जैन पहले से जेल में थे। उधर मनीष सिसोदिया पर भी CBI शिकंजा कसती जा रही थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि घोटाले की जांच में साउथ ग्रुप और एक डिजिटल डिवाइस का नाम बार बार आ रहा है, और इस कथित साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए ही पॉलिसी के फाइनल ड्राफ्ट में कुछ बदलाव किए गए थे। होलसेलर को 12% मुनाफा देने वाली बातें जोड़ी गई थी, जो पहले 6% थी। पिछले साल 14 अगस्त को एक्साइज डिपार्टमेंट पर मारे गए छापे में CBI को एक डिवाइस मिली थी, जिससे ये पता चला कि ड्राफ्ट की कॉपी व्हाट्सएप से डिपार्टमेंट नेटवर्क के बाहर शेयर की गई, जिसके तार उप मुख्यमंत्री ऑफिस से जुड़े हैं। दिल्ली की राजनीति में अचानक बदले इस घटनाक्रम को समझने के लिए हमने बात की दिल्ली की राजनीति कवर करने वाले राम किंकर सिंह से। राम, मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा देकर अपने विरोधियों को भी चौंका दिया है, या फिर इसका थोड़ा बहुत आइडिया था पहले से?
देखिए, बहुत पहले से आशंका थी कि इस तरह की कोई चीजें हो सकती हैं, क्योंकि चारों तरफ से दबाव पड़ रहा था। पहले ही सरकार सत्येंद्र जैन के मामले को लेकर के चारों तरफ से घेर रही थी। ऐसे में मनीष सिसोदिया का इस तरह से कोर्ट का उनको 5 दिन की रिमांड पर भेजना और CBI का शिकंजा कस जाना, और BJP लगातार हमलावर थी, और चूंकि मनीष सिसोदिया का जैसे ही रिमांड मिली CBI को, वैसे BJP बार बार मांग करने लगी कि इस्तीफा लिया जाए। और सुबह से ही जो है तमाम BJP प्रवक्ता सोशल मीडिया पर लगातार ये ट्रेंड करना शुरू किए कि इस्तीफा लिया जाना चाहिए। और उसके बाद से एक डेवलपमेंट ये आया कि अचानक से ही सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की अर्जी लगती है, और उसका वक्त जो है मुकर्रर होता है 2:50 पर, और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई। उससे पहले पंजाब का एक मामला था, लेकिन इस मामले में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सकते, पहले हाई कोर्ट आपको जाना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ने इसका सम्मान किया है और कहा है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे। फिलहाल एक बहुत बड़ा झटका है, दिल्ली सरकार के लिए, क्योंकि पिछले 8.5 सालों से नंबर दो की पोजीशन पर थे मनीष सिसोदिया, जो कि पार्टी के लिए हर रणनीति बनाते थे, और अरविंद केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है और वह मनीष सिसोदिया पर ही पूरा भरोसा करते थे। अब उनके जेल जाने के बाद जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, और यही वजह है कि इस्तीफा लिया गया। और अब जो है इस्तीफे के बाद अभी जो कार्यभार है वह राजकुमार जो कि नए मंत्री थे वो देखेंगे, साथ ही साथ कैलाश गहलोत देखेंगे।
अच्छा, इस्तीफा देने का फायदा आम आदमी पार्टी को ज्यादा मिलेगा या फिर ये इस्तीफा मांगने वालों को?
देखिए, ये जग जाहिर है कि इस्तीफा जो मांग रहे थे जाहिर तौर पर वह इस चीज को मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि जब पिछले साल शराब की पॉलिसी आई थी तो बीजेपी हर मौके पर विरोध कर रही थी, बार बार कह रही थी कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में यह कैसे खुल सकती है, और तभी से वह मुद्दा बना रही थी कि यह भ्रष्टाचार का मुद्दा है। हमने देखा कि पिछले साल जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए थे तो बाकायदा शराब नीति को एक मुख्य मुद्दा बनाया गया था और लगातार बीजेपी घेर रही थी। तभी से यह कयास लग रहा था कि अगर सीबीआई का शिकंजा कसता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी हमले तेज कर देगी, और जैसे ही इस्तीफा हुआ है बीजेपी इसका क्रेडिट ले रही है। उसका यह कहना है कि हम तो पहले से ही कह रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल चूंकि जो स्थिति है वह ठीक नहीं जा रही थी और यही वजह है कि इस्तीफा लिया गया है, और चूंकि कोई नया मंत्री अब इंडक्ट नहीं होगा और यही वजह है कि कैलाश गहलोत और राजकुमार प्रधान ये दोनों जो है मनीष सिसोदिया के, चाहे वो फिनांस का मसला हो, पीडब्ल्यूडी का मसला हो, तकरीबन 18 विभाग 33 में से देख रहे थे, तो जाहिर तौर पर अब ये दो मंत्री इनके विभागों को देखेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, यहां से लेकर पंजाब तक हर जगह इस शराब नीति को लेकर के जो है स्थिति सामने आई है और बैकफुट पर नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। पंजाब में तो इस शराब नीति को इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई थी, इससे पहले कि इम्प्लीमेंट होता पोर्टल पर डाला गया था, चीजें फॉर्म निकाले गए थे, बावजूद इसके जब जैसे ही चौतरफा विरोध हुआ इसको वापस ले लिया गया। तो साफ है अब यह मुश्किल का दौर है आम आदमी पार्टी के लिए, और साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि जो विकास का काम है, साथ ही साथ जो शिक्षा का काम है, जो आम आदमी पार्टी अलग अलग फ्रंट पे कहती आई है, वहां पर अब कौन नया चेहरा होगा जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यकीन करते हैं, और मनीष सिसोदिया के बरक्स कोई चेहरा अभी तक दूर दूर तक नहीं दिखता है, और यही वजह है कि अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होती है और दिल्ली सरकार में वो किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि फरवरी का आखिरी हफ्ता बीत चुका है, अभी दिल्ली को उसका बजट देना है और कई G20 समिट होना है, उसको लेकर के कई विकास के काम अभी उलझे हुए हैं, आश्रम फ्लाईओवर उलझा हुआ है और साथ ही साथ प्रगति मैदान का ट्रांजिट कॉरिडोर, वहां पर भी पीडब्ल्यूडी की तरफ से कुछ काम चल रहे हैं, लेकिन सारे कामों पर ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं इसके बाद से एक नया संकट आन पड़ा है।
बहुत बहुत शुक्रिया राम। राजनीतिक तौर पर अस्थिरता इन दोनों पूरी दुनिया में एक संकट की तरह फैल गई है। एशिया में इसके ताजा उदाहरण है पाकिस्तान, श्रीलंका, अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है नेपाल, जहां 2 महीने पहले ही सरकार बनी थी। तय तो यह हुआ था कि शुरुआती 2.5 साल प्रचंड प्रधानमंत्री रहेंगे, इसके बाद CPNUML के मुखिया KP शर्मा ओली कुर्सी संभालेंगे। 2 महीनों तक सरकार ठीक ठाक चली भी, लेकिन 9 मार्च को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए बात बिगड़ गई है। असल में प्रचंड को गठबंधन सरकार के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन 2 दिन पहले पीएम ने ऐलान किया कि वो विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के कैंडिडेट रामचंद्र पौड़ियाल को सपोर्ट करेंगे। इसके बाद गठबंधन सरकार में शामिल नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने कल अलायंस छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके चीफ पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। जाहिर है इसके बाद तो फिर सरकार पर खतरा पैदा हो ही गया। गठबंधन में आई दरार के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने परसों से होने वाला अपना खतर दौरा रद्द कर दिया। इसी के बाद कहा जाने लगा कि नेपाल में अगर इस दरार का हल नहीं निकला तो संभव है फिर से चुनाव की स्थिति बनाए। सवाल तो यह है कि अगर यह साफ था कि विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन करने से बात बिगड़ जाएगी तो सरकार पर खतरे के बावजूद प्रचंड ने फैसला क्यों लिया, या ऐसा था कि दरार पहले से थी और प्रचंड बहाने ढूंढ रहे थे? तो ये समझने के लिए हमने बात की नेपाल के कांतिपुर मीडिया ग्रुप में जर्नलिस्ट राजेश मिश्रा से।
देखिए, सबसे पहली बात तो सरकार में प्रचंड और केपी ओली जी साथ में थे, लेकिन प्रचंड जी ने दूसरे पार्टी नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार को राष्ट्रपति में समर्थन करने का निर्णय कर दिया। उसके बाद में केपी ओली जी ने सरकार से अपने आप को बाहर कर लिया है, सरकार को जो समर्थन दिया था उन्होंने वापस ले लिया है एक रोज पहले। तो प्रचंड जी इस मामले में कॉन्फिडेंस थे, क्योंकि उनके पास ओली जी के अलावा जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो पार्लियामेंट में होता है, तो उस समय में कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी पार्टियों ने भी उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था, जिसके वजह से उनके पास जो सरकार बनने के लिए जो एक मत की संख्या होती है, यहाँ पे 138 है, उससे काफी ज्यादा उनके पास वोटों का कलेक्शन था। अगर यूएमएल पार्टी उनसे अलग भी हो जाती है या हो गई, तो उनके पास जो वोट का जो पर्याप्त संख्या है अभी भी उनके पास सुरक्षित है। इस वजह से प्रचंड जी कॉन्फिडेंस थे कि मेरे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है अभी। हाँ, बजाय अब अगले 1 महीने के अंदर में, 30 दिन के अंदर में उनको पार्लियामेंट में फिर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक रूल्स है कि अगर सरकार का दिया गया समर्थन किसी पार्टी ने अपना वापिस ले लिया है, तो प्रधानमंत्री को उस घटना के 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट में अपने आप को प्रूफ करना होता है कि मेरे पास बहुमत है। तो ये प्रोसेस अगले 1 महीने चलेंगे, लेकिन इधर चल क्या रहा है कि जो गठबंधन है, इलेक्शन के समय में जो प्रचंड जी का गठबंधन था, प्रचंड जी और नेपाली कांग्रेस या और दूसरे पार्टी, 5 पार्टियों का गठ था, उस गठबंधन के बल पे वो लोग इलेक्शन में गए थे, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद प्रचंड जी का गठबंधन, इस गठबंधन से प्रचंड जी अलग हो गए, वो यूएमएल के साथ चले गए, यूएमएल के समर्थन में उनका सरकार बना। लेकिन फिर 2 महीने के बाद नाटकीय ढंग से घटनाक्रम का परिवर्तन हुआ है, नाटकीय, और प्रचंड जी फिर पुराने वाले गठबंधन में ज्वाइन कर लिए, अर्थात जो अभी विपक्ष में कांग्रेस पार्टी थी उसके साथ प्रचंड जी अब साथ में आ गए हैं, और जो सरकार में थी यूएमएल को भी केपी ओली जी के लीडरशिप वाली पार्टी, वो विपक्ष में चला गया है आज से। तो अब 1 सप्ताह बाद आपको राष्ट्रपति का इलेक्शन है, और राष्ट्रपति के इलेक्शन में 2 उम्मीदवार हैं, एक नेपाली कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं रामचंद्र पौडेल, और दूसरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले का लीडर है सुभाष नेमान। तो दिखाई ये दे रहा है कि जो सरकारी सरकारी पक्ष, जो अभी नया सरकारी पक्ष बना है सरकार का गठबंधन, जिसमें प्रचंड जी है, नेपाली कांग्रेस है या मधेशी पार्टियां जिसको बोलते हैं वो दल हैं, और भी कई सारे दल हैं, 8 पार्टियों का गठबंधन है इधर सरकार के साइड में, और जो अभी अभी सरकार से बाहर निकले हैं ओली जी, उनके साथ अभी 2 या 3 पार्टी का समर्थन दिखाई दे रहा है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के कारण से ही अभी गठबंधन में आपको उतार चढ़ाव हुआ है, गठबंधन में बदलाव आया है, क्योंकि प्रचंड जी चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री हैं तो राष्ट्रपति जो है दूसरे किसी पार्टी को मिले, ना कि यूएमएल को मिले, ओली जी को मिले, क्योंकि ओली जी के पास पहले से ही पार्लियामेंट का स्पीकर उनके पास चला गया है, तो पावर शेयरिंग के हिसाब से प्रचंड जी चाहते थे स्पीकर भी और प्रेसिडेंट भी ओली जी को अगर मिल जाता है, और सर गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री है उसमें भी पावरफुल मिनिस्ट्री भी ओली जी के पास है, तो मैं कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में रहूंगा और मैं उतना अच्छा काम नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से वो पावर शेयरिंग चाहते थे कि अलग अलग ढंग से हो, अलग अलग पार्टियों को का पावर शेयरिंग हो, और वो क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट पद यूएमएल को देना नहीं चाहते थे, और वो पुराने वाले गठबंधन के साथ में जाकर के अभी मिल गए हैं, और उम्मीद है ये है कि प्रचंड जी अभी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि उनके पास कांग्रेस पार्टी और कई सारे और पार्टियों का समर्थन प्राप्त है उनको।
राजेश, इस दरार का और सरकार पर आए इस खतरे का भविष्य क्या देखते हैं आप? क्या ये झगड़ा भी उसी जोन में है कि बातचीत हो जाएगी और संभल जाएगा मामला, या फिर अब राजनीतिक अस्थिरता की तरफ देश बढ़ चुका है?
जी हाँ, जब इलेक्शन हुआ आपको नवंबर के लास्ट वीक में करीब, तो इलेक्शन के रिजल्ट से ये हुआ कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन इलेक्शन में 5 पार्टियों का गठबंधन था, जो आपको प्रचंड जी, कांग्रेस पार्टी, वैसे ही एक समाजवादी पार्टी कह के है, और कई सारी पार्टियां, तो 5 पार्टियों के पास बहुमत से सिर्फ 2 या 3 सीट कम थी, जो पार्लियामेंट में बहुमत साबित करना होता है उसमें 138 है, तो इनके पास 136 के करीब सीट था ये 5 पार्टियों के पास, लेकिन आज के डेट में 5 की पार्टी के बजाय वो 8 पार्टी बन गया है, और भी छोटे कई छोटे पार्टी उसमें जुट गए हैं, तो 8 पार्टियों के पास अच्छा बहुमत है, और वो बहुमत अगर कायम रहता है और वो सारे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के में बदलता है अगले 30 दिनों में, तो प्रचंड जी के पास एक अच्छा खासा बहुमत फिर कायम रहेगा और वो प्रधानमंत्री के रूप में कंटिन्यू रहेंगे। तो और इसी तरह का अंदरूनी इन लोग के पार्टियों के बीच में एक प्रकार का सहमति चला है कि प्रेसिडेंट कांग्रेस को दिया जाए और क्या कहते हैं कि सरकार प्रचंड जी चलाएंगे और कैबिनेट में सारे पार्टियों को हिस्सेदारी मिलेगी।
बहुत शुक्रिया आपका राजेश। पिछले साल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, आरजेडी का दामन थामा था। महागठबंधन जो 2017 में टूट गया था वो फिर से बहाल हुआ। इस महागठबंधन 2.0 के नेतृत्व में बिहार का पहला बजट आज वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पेश किया। 2,18,302 करोड़ 70 लाख रुपए का यह बजट है। नौकरियों पर सरकार का फोकस होगा ऐसी बात कही गई है। इसके साथ ही बजट से पहले इंडस्ट्री लगाने की बात भी कही जा रही थी। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को गठबंधन की कमान देने की बात की जा रही है, उस लिहाज से भी इस बजट को अहम बताया गया। हालांकि बीजेपी ने बजट को फ्लॉप कहा और कुछ भी नया न होने का दावा किया। तो पहले बात करते हैं बिहार के 2023-24 के बजट की, इसका लबोलुआब क्या रहा, और यह हमने पूछा इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर जर्नलिस्ट पुष्यमित्र से।
देखिए, बिहार जैसे राज्य में जो बहुत सारे संसाधनों के लिए खासतौर पर केंद्र पर और दूसरी संस्थाओं पर निर्भर है, बजट में बहुत खास नहीं हो सकता है सिवाय इसके कि सरकार की नीयत ठीक हो। तो इस बजट में यही समझ में आया कि सरकार की नीयत ठीक है, बजट का आकार बढ़ा है और जगह पर चीजें हुई है और खर्च उसी हिसाब से हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में कुछ बहालियां आई है, इसमें कुछ अस्पतालों के खुलने की बात हुई है। पर्यटन मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय में बहुत ज्यादा बजट का नहीं होता, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली, ऐसा नहीं लगता है कि बहुत प्रभावशाली किसी मत में वृद्धि हुई है, बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। और बिहार जैसे राज्य में मुमकिन भी नहीं है क्योंकि बिहार के पास अपने आमदनी के स्रोत नहीं है। बिहार के पास अगर देखे तो वो बहुत सारी चीजों पर के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। बिहार जैसे कि अगर इसमें देखें कि बिहार की अपनी आमदनी कितनी है इस बजट में, पिछले बजट को ही देखते हैं तो बहुत कम आमदनी बिहार सरकार की अपनी है।
पुष्यमित्र, जैसा कि रोजगार को लेकर तो पहले से बात हो रही थी, बजट में क्या ऐलान हुए?
देखिए, ऐलान जरूर किया गया कि बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएगी। इसका आधार ये था कि बिहार में अभी जिस वक्त ऐलान किया जा रहा था 4.5 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली थे। ये हम लोग भी लगातार कह रहे थे 4.5 लाख पद खाली थे। इसके अलावा तेजस्वी यादव की तरफ से ये आकलन भी कराया गया जनसंख्या के बढ़ते दबाव की वजह से कितने पद और सृजित किए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो पद सृजित थे वो पुराने आधार पर थे। तो सब मिला के 10 लाख पदों का एक आकलन निकला कि 10 लाख नौकरियां बिहार में लोगों को दी जा सकती है सरकारी सेवाओं, एक आधार था। लेकिन आधार सिर्फ इतना था क्योंकि ये चुनावी वादा था, तो केवल ये देख लिया गया कि कितने पद खाली हैं और कितने पद और बढ़ाए जा सकते हैं, केवल ये देखा गया। ये नहीं देखा गया कि इसके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। पिछले बजट में हम लोग देखते हैं कि बिहार में नौकरी वेतन और पेंशन इन दोनों मद में 54,000 करोड़ से कुछ ज्यादा पैसे खर्च हुए, इतना बजट अलॉटमेंट हुआ था। ये बिहार का कुल बजट का जो आकार है 2,25,000 करोड़ का होता है, तो इस तरह से लगभग 1/4 या 20% पैसा जो है वो वेतन और पेंशन पर बिहार सरकार खर्च करती है। अब अगर बिहार सरकार कह रही है कि हम 10 लाख नौकरियों को देंगे, तो 10 लाख नौकरियां के हिसाब से उसके पास बजट में वो खर्चा भी होना चाहिए। अभी इस वक्त जो बिहार में हम लोग देखते हैं, बिहार में 7.6 लाख अभी सरकारी सेवक हैं जो नौकरी करते हैं और 3.8 लाख ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन मिलता है। तो इन सब लोगों को मिला के अगर 54,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, तो अगर 10 लाख और बढ़ जाते हैं नौकरी, तो लगभग 54,000 करोड़ और खर्च होगा। ये 54,000 करोड़ कहाँ से आएगा, इसकी बात नहीं होती है। बजट में वादे तो कर दिए गए हैं कि लगभग 1.5 लाख से 2 लाख नौकरियां गिना दी गई कि जो आने वाले समय में दी जाएगी, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 10 लाख नौकरियां दी जाएगी, लेकिन उसका उसके पैसे का अलॉटमेंट नहीं है। इस बजट में भी जब हम देखते हैं कि वेतन मद में, वेतन और पेंशन मद में कितना पैसा है, तो 59,000 करोड़ है। 54,000 करोड़ से 5,550,000 करोड़ बढ़ के 59,000 करोड़ हुआ, तो वृद्धि कुल हुई 5,550,000 करोड़। अब 5,550,000 करोड़ के में अगर हम देखें तो बिहार के सरकारी सेवकों का वेतन 5.4 लाख पर एनम है एवरेज, तो उस हिसाब से देखते हैं तो बमुश्किल 1 लाख से कुछ अधिक नौकरी दे पाएंगे जो वृद्धि हुई। हालांकि उसमें इस वृद्धि में हो सकता है कि वेतन वृद्धि भी हो, कुछ और भी खर्चे हो, लेकिन मान लीजिए नहीं हो वेतन वृद्धि या पेंशन की वृद्धि ना हो, तब भी हम देखते हैं कि 1 लाख से अधिक ही नौकरी दे पाएंगे। 10 लाख की नौकरी की बात मुझे अभी तो नहीं लगती है कि इसमें कुछ गुंजाइश बनती है।
बहुत शुक्रिया पुष्यमित्र। उधर प्याज जो है वो खाने का स्वाद बढ़ा देती है, लेकिन इसकी एक तासीर है, इसे खाने के लिए आंसू बहाने पड़ते हैं, काटने के लिए भी। लेकिन आजकल ये खाने वालों को ही नहीं, या फिर प्याज काटने वालों को ही नहीं, सबको ही रुला रहा है। ग्लोबल मार्केट में प्याज के दाम सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 250 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि फिलीपींस में 1200 रुपये, और इस वजह से प्याज की स्मगलिंग भी होने लगी है। इसके अलावा अमेरिका, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, सिंगापुर जैसे देशों में प्याज की कीमतें लोगों की जेब ढीली कर रही है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? एकदम उलट। यहाँ किसान औने पौने दाम पर प्याज बेचने के लिए मजबूर हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के किसान राजेंद्र चव्हाण सुर्खियों में हैं, क्योंकि मंडी में 512 किलो प्याज बेचने के बाद भी उन्हें केवल 2 रुपये का चेक मिला। और ये सिर्फ एक किसान मंडी की बात नहीं है, महाराष्ट्र के अहमदनगर, नासिक, नागपुर, सोलापुर, हर जगह प्याज का रेट अपने सबसे निचले स्तर पर है। एक क्विंटल प्याज 500 रुपये में मिल रही है। कीमत इतनी गिर गई कि किसान अपनी फसल की लागत भी नहीं निकाल पा रहे। नासिक जिले के किसान हैं सुनील रतन बोरगुड़े, उन्होंने अपनी 2 एकड़ में कटी हुई प्याज की फसल पर ट्रैक्टर और रोटावेटर चढ़ाकर उसे मिट्टी में मिला दिया। और इस मुद्दे पर फिर सियासत भी हो रही है। महाराष्ट्र में बजट सत्र के दौरान एनसीपी के नेता गले में प्याज की माला पहनकर पहुंच गए, नारेबाजी भी की। तो प्याज की कीमतों में अचानक आई गिरावट के कारण क्या है, यह हमने पूछा नासिक में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर प्रवीण ठाकरे से।
इसमें यह है कि हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र की ना सोचे, टोटल जो प्याज उत्पादक राज्य स्टेट्स है उसके बारे में सोचते हैं। हम लोग थोड़ा अगर पीछे जाएंगे 2000 में तो वाजपेयी सरकार भी गिरी थी, तो उस टाइम जो प्याज के जो प्रोडक्शन वाले जो स्टेट्स है वो था मेन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान का कुछ इलाका। उसमें महाराष्ट्र का शेयर था वो 70-80%। लेकिन अभी अगर आप स्टैटिस्टिक ज्यादा अवेलेबल नहीं है सेंटर से, लेकिन जो भी यहाँ मिले हैं तो उस हिसाब से इस साल गुजरात और जो राजस्थान का अलवर एरिया है और मध्य प्रदेश का मंदसौर करके है, इस इलाके में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। और ये कंपेयर टू महाराष्ट्र, दोनों स्टेट अगर मिलाया जाए तो महाराष्ट्र से भी ज्यादा प्रोडक्शन गुजरात और एमपी में है। और क्योंकि जो भी ओनियन महाराष्ट्र में बुआई होती है, ये लेट खरीफ का सीजन है, तो ये सब ओनियन जाता है नॉर्थ में, यूपी से लेकर कश्मीर तक। लेकिन क्योंकि गुजरात और एमपी से ओनियन खरीद के, मतलब प्याज खरीद के वो दिल्ली ले जाना आसान है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है और बाकी कॉस्ट जो है वो काफी फर्क पड़ता है कंपेयर टू महाराष्ट्र। इसकी वजह से जो महाराष्ट्र के किसानों की जो लोकल मार्केट, जो मार्केट थी नॉर्थ इंडिया की, गई। इसकी वजह से यहाँ डिमांड काफी कम है और जो अराइवल है ओनियन का वो काफी ज्यादा है। और इसी वजह से जो ट्रेडर से हमारी बात हुई कि दो मार्केट थे, एक डोमेस्टिक मार्केट था नॉर्थ वाला, वो तो खत्म हो गया है। जो साउथ का मार्केट है वो कर्नाटक और तेलंगाना का जो इलाका है, वहां जो छोटी प्याज आती है कंपेयर टू साइज में, तो वो वहां ज्यादा चलती है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए मार्केट ही नहीं बचा है। दूसरा पॉइंट जो है वो है एक्सपोर्ट का। तो मेजर जो लेट खरीफ की जो रेड ओनियन होती है, रेड प्याज जो होती है, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज्यादा से ज्यादा 45 से 60 डेज होती है। तो तुरंत इसको बेचना पड़ता है और ये एक्सपोर्ट होता है स्पेशली बांग्लादेश, श्रीलंका और गल्फ कंट्रीज। और एक अभी जो बांग्लादेश में काफी हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा के रखी है प्याज पे, इसलिए बांग्लादेश में प्याज का जो एक्सपोर्ट है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि श्रीलंका में हालात काफी अस्थिर थे और वहां के ट्रेडर्स अभी कोई ज्यादा ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो वो भी इंपोर्ट जो है श्रीलंका से वो बंद है। ये बड़ी दिक्कत है।
प्रवीण, किसानों की क्या मांगे हैं और उनको हो रहे नुकसान पर सरकार का क्या रुख है, कोई बात हुई है क्या?
किसानों की जो मांग है या आप दो है, जो भी नेबरहुड कंट्री है तो वो हमारे फैमिली का हिस्सा है, तो आप उनसे जो अपना व्यापार है, जो ट्रेड है वो बढ़ाइए और ओनियन को एक्सपोर्ट कीजिए। और दूसरी जो मांग है कि भाई हम लोग जितना प्याज बेच रहे हैं, आप अगर उस लेवल पे हेल्प नहीं कर सकते तो जितनी प्याज हम लोग बेच रहे हैं उस पर आप हमें सब्सिडी कीजिए पर क्विंटल, क्विंटल यानी 100 किलो के लिए आप हमें 500 रुपए दीजिए, क्योंकि जब ओनियन महंगा हो जाता है तो आप प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड जो है उसको यूज करते हो और ग्राहकों को सहूलियत देते हो या रियायत देते हो, तो वैसे ही रियायत हमें दी जाए, हमें सब्सिडी दी जाए 500 रुपए पर क्विंटल यानी 5 रुपए पर किलो को हमें दिए जाए, ऐसी किसानों की मांग है। लेकिन क्योंकि अभी कोई डिसीजन नहीं हो रहा, कोई भी आज पहली बार पॉलिटिकल जो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे ने उन्होंने कहा कि हम लोग किसानों के साथ है, केंद्र से बात करके हम लोग इसमें वे आउट निकालेंगे। पहली बार पॉलिटिकल या फिर सत्ताधारी जो है सरकार उनसे स्टेटमेंट आया है। अभी किसान राह देख रहे हैं कि जो सेंटर है सेंटर क्या करेगा, और यही आवाज जो किसानों की थी उन्होंने कल जो लासलगांव मंडी है प्याज की, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, उस वहां पूरे जो ऑक्शन थे उन्होंने वो दिन भर रुका के रखे थे, और फिर आखिरकार यहाँ के जो गार्डियन मिनिस्टर है वो उनसे मिले किसानों से, उनसे बात की, और किसानों को जो है उनका एक डेलीगेशन जो है वो सीएम और डीसीएम जो है देवेंद्र फडणवीस उनसे मुलाकात करेंगे, वो मीटिंग फिक्स करवाई, तब जाके जो प्रोटेस्ट था किसानों का वो पीछे आए वो लोग।
अच्छा, दाम का घटना तो देखिए अभी की बात है, और किस तरह के चैलेंजेस हैं प्याज की खेती करने वाले किसानों के सामने?
जो प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट, अगर आपको याद होगा 10 साल पहले अगर आप प्याज खरीदते होगे तो वो 10 रुपए या 20 रुपए के आसपास ही आप खरीदते होगे एवरेज रेट अगर निकालोगे, और वही हालत अभी है। लेकिन किसानों का जो है प्रोडक्शन कॉस्ट वो लगभग 300% बढ़ गया है, मतलब जो खाद है जो बीज के रेट है वो काफी बढ़ गए हैं। देन जो लेबर है, मतलब आप अगर 2005-06 से लेकर 2010 तक जो लेबर कॉस्ट थी वो था हर एक मजदूर का 100 रुपए दिन का, अभी 400 रुपए देकर भी किसानों को लेबर नहीं मिल रहा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है पहले पर किलो के पीछे 1 रुपया था किसानों के लिए, अभी वो 3 रुपए हो गई है। तो ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है इसकी वजह से जो ओवरऑल प्याज मार्केट एपीएमसी में बेचने तक किसान की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मिनिमम 12 रुपीज हो गई है, और इसमें अगर 30% ओनियन का लॉस होता है क्योंकि वो जैसे जैसे उसका स्टोरेज करते जाते हम लोग तो उसका वेट कम हो जाता है, वो ड्राई होता है, ट्रांसपोर्टेशन लॉस होता है क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, तो इसमें 20-30% ओनियन ओवरऑल तो लॉस ही होता है। ये सब मिला के अगर कैलकुलेशन किया जाए तो किसान को हाथ में कम से कम 20 रुपए चाहिए, जो बेस प्राइस की मांग हो रही है पिछले कई सालों से। तो मार्केट का भी मेंटेलिटी होगा क्या, क्योंकि जैसे प्याज का रेट 50 रुपए या 40 रुपए छू लेता है तो फिर शुरू हो जाता है कि भाई महंगाई आ गई महंगाई आ गई। तो ये भी मेंटेलिटी चेंज होने की जरूरत है कि अभी प्याज 30 या 40 रुपए से ही आपको मिल सकता है, या फिर क्या होगा अगले 2-1 साल में ऐसे ही सिचुएशन रही तो जैसे 99 में हुआ था कि किसानों ने प्याज बोना ही बंद कर दिया था, और इसकी वजह से इतना स्कैरिटी आ गया कि हालत खराब हो गई थी।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण। और अब बारी भौचक की, लेकर आ गए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी।
तुम्हारे महल ये चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। शैलेंद्र का लिखा यह गीत किसने नहीं सुना होगा। जिंदगी की कड़वी हकीकत को दर्ज करता हुआ ये गीत हमें बताता है कि दुनिया में आप चाहे जो भी हासिल कर लें लेकिन मरने के बाद तो सब यहीं छोड़कर जाना होगा। और अगर आप अगले जन्म में यकीन रखते हैं तो भी आपको नए जन्म में फिर से सब कुछ शुरू करना होगा। इसी बात को हमारे एक मित्र बहुत फूहड़ तरीके से कहते थे। वो कहते थे कि पढ़ लिख कर क्या करना है, पढ़ लिख कर क्या करना है, एक दिन तो मरना है, और मरकर दूसरा जन्म लिया भी तो फिर नर्सरी से शुरू करना है। लहजे से तो ये एक मजाहिया बात लगती है लेकिन हकीकत यह है कि है बहुत गहरी बात। इंसान चाहे जो कुछ कमा ले, चाहे जो कुछ सीख ले, पर कुछ भी साथ नहीं जाता। नए जन्म में फिर से नई शुरुआत करनी ही पड़ती है अगर आप नए जन्म पर यकीन रखते हैं तो। कम से कम आज सुबह तक तो हम भी यही मानते थे, लेकिन फिर नजर पड़ी एक ऐसी भौचक खबर पर जिसे पढ़ने के बाद दिमाग हिल गया साहब। खबर सुनाने से पहले आप ये सुनिए।
सो द प्रपोजल इज वी गो टू बिल गेट्स एंड से यू गॉट 100 बिलियन एंड यू आर गिविंग फिलैंथ्रोपी दिस दैट बिकॉज चैरिटी विल गेट यू टू हेवन एंड व्हाट नॉट, दैट इज योर ट्रेडिशन। आउट ऑफ द 100 बिलियन यू गिव 50 बिलियन टू अस इन ट्रस्ट टू बी गिवन टू यू इन योर नेक्स्ट लाइफ व्हेन वी फाइंड यू, बिकॉज इट इज पॉसिबल यू मे बी बॉर्न वेरी पुअर। Bill Gates may be born very poor, and Warren Buffett may be born in some African village, is very poor guy. Because, you know, the karma people, the people in the sky who are the admin for karma might say, okay, you had one good life, now you have to be poor also. So if we can, within the rules of the Agama, locate where Bill Gates is next time and give him at least 5-10 billion, he'll be much happier.
यह आवाज है राजीव मल्होत्रा साहब की, जिसमें वो एक प्रपोजल की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक ट्रस्ट बनाया जाए जिसमें लोग अपनी जायदाद का आधा हिस्सा जमा करवा सकते हैं और इस जमा किए हुए हिस्से का कुछ परसेंट उन्हें अगले जन्म में दिया जा सकेगा। है ना कमाल का प्रपोजल। अब बताते हैं कि ये साहब हैं कौन। राजीव जी लेखक और विचारक हैं। वो इन्फिनिटी फाउंडेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका मकसद है प्राचीन भारतीय धर्मों की कथित गलत व्याख्या से लड़ना और ग्लोबल सिविलाइजेशन में भारत के योगदान को दर्ज कराना। पर सोचिए कि अगर जैसे राजीव साहब ने कहा वैसा हो सकता और वाकई कोई आपकी रकम को इस जन्म से उस जन्म में पहुंचा सकता तो सबसे पहले क्या होता। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सबसे पहले तो उस पर टैक्स लग जाता। पर उसको छोड़िए, कितना सही होता ना कि मैं दफ्तर जा रहा होता, रास्ते में एक आदमी आता और कहता, वो एक्सक्यूज मी साहब, आप जमशेद कमर सिद्दीकी हैं? मैं कहता यस। वो कहता लीजिए, पिछले जन्म में आप बहुत अमीर थे, ये पैसे आपने हमें देने के लिए कहा था, लीजिए। बैग थमाकर वो आदमी चला जाता और मैं उसी वक्त गाड़ी यू टर्न लेकर वापस घर आ जाता। खैर, ये तो सिर्फ प्रपोजल है, हकीकत तो ये है कि आदमी अभी अपनी कैजुअल लीव्स भी अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता। दौलत अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करना तो बहुत दूर की बात है। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो।
और अब दिन भर को देते हैं विराम और हमारे खास शो हेलो डॉक्टर का नया एपिसोड आ गया है। इस बार बात हुई है दाद खाज खुजली की, तो यदि आप भी आपके आसपास कोई इस बीमारी से परेशान है तो सुनिएगा जरूर और बताइएगा radio@aajtak.com पर कि कैसा लगा। आज का शो प्रोड्यूस किया है कुंदन ने, साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए और आज तक रेडियो सुनते रहिए।